उन लोगों ने अपने सरल सहज कविता में, गीति कीर्तन में, काव्य के माध्यम से जगत जीवों के यहां प्रकाश किया, सरल सहज रूप। बड़ा भारी कठिन काम था। भक्ति विनोद ठाकुर जी रात में 8-9 बजे तक सो जाते थे प्रसाद पाकर, 12 बजे के बाद में जग जाते, और जग करके लीला स्मरण इत्यादि करते हुए कीर्तन करते थे। जो जो भाव आता था उसी का पद्यानुवाद बंगला में लिखते जाते थे। उसी लिए शरणागति, कल्याण कल्पतरु,
गीतावली,
गीतिमाला,
साधकंठमाला
इत्यादि की सबकी रचना की।
जामुन
भवावली से 1 करोड़ गुण अधिक है
रूपानुग भजन
संभव। जामुन भवावली केवल शरणागति का भाव है। जामुन भवावली में किस चीज का कीर्तन उन्होंने किया? जैसे श्लोक है 1, नाहम बंदे तब चरण युवत दंद दंद हेतु कुंभी पाकम नारकम नाप नेतुम रम्या रामा मृद तनुलता नंदने नाभिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावयंतम भवंत। चाहे हम नरक में जाएं चाहे स्वर्ग में जाएं, हम स्वर्ग इसलिए नहीं चाहते कि नंदन कानन जैसा सुख हो। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएं, ये भी नहीं चाहते हैं, चलता रहे जैसा चल रहा है। किंतु हमारे हृदय में भावे भावे हृदय भवने भावयंतम भवंतम 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 माने कौन? कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र के लिए भावे। आपका जो भाव है, क्या भाव है? भाव क्या? उनके बहुत तरह के भाव हैं। सखाओं का उनके प्रति भाव है, दस भक्तों का उनके प्रति भाव है, शांत लोगों का भाव है, सबसे अधिक वात्सल्य का भाव है, वात्सल्य से भी अधिक गोपियों का भाव है। उन गोपियों में भी 5 प्रकार की गोपियां हैं, उसमें ललिता इत्यादि प्रिय नर्म सखी हैं, परम प्रेष्ठ सखियां हैं। उन्हें भी चंद्रावली या राधिका जी का भाव श्रेष्ठ है, उसमें भी राधा जी का भाव श्रेष्ठ। तो भावे भावे हृदय भवने, हमारे हृदय भवन में वो सब भाव उठे हैं, जो कौन सा भाव लेकर के हम राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। किंतु उनका ये विचार नहीं था, वो जिनका वो लिखा हुआ है जामुन जमुनाचार्य का इत्यादि का, इतना ऊपर में जा ही नहीं सकते थे। इसलिए रूपानुग भजन संपत्ति में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसा चिद्या महाप्रभु का भाव उसमें लाया। रघु रूप गोस्वामी जी का वो चाटू पुष्पांजलि है ना, और एक कौन है उसका उन्होंने जो अनुवाद किया है अद्भुत है।
चाटू पुष्पांजलि 10 गोस्वामी का,
गुरु महाराज जी रूप गोस्वामी का श्लोक जो है 20-25 है, उसी का उन्होंने संग्रह किया।
देवी गुरचना गोरी प्रवरिंदी बरम्बरा मनिस्तवक विद्युति
सबका दिया है। उसमें शरणागति भी है और अंतिम रस की बिंदु तक है, जिसको चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए थे। है बहुत भक्ति, भागवत में भी भक्ति का वर्णन किया है। हम लोग उन सबको नमस्कार करते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग ये देखेंगे चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर थे वो क्या देने के लिए आए थे, क्योंकि हम उस धारा में है ना, इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज जी प्रणम्य है हम लोगों के, नारद जी प्रणम्य है, चित्रकेतु महाराज जी भी प्रणम्य है हमारे, कपिल देवहूति जी भी हमारे प्रणम्य है, सब वो ठीक है। किंतु महाप्रभु जी और उनके परिकर लोग क्या देने आए? महाप्रभु जब गोदावरी के तट पर गए तो क्या दिया उनको?
रामानंद जी के,
राय रामानंद जी को, या राय रामानंद से लिया क्या हुआ बतलाइए तो। रामानंद को उन्होंने दिया न लिया, देखने में मालूम होता है जे लिया किंतु लिया नहीं, महाप्रभु को कौन देगा। महाप्रभु जी ने उनके अंदर में वृत्ति जगा करके और उनसे पूछ करके बड़े सुखी हुए उन चीजों को पा करके। वर्णाश्रम धर्म से आरंभ किया और ले गए श्रीमती राधिका प्रेम तक, एकदम वहां पर ले। इनमें से जो जिस चीज का अधिकारी है वही लेकर के बस रह जाएगा। समुद्र में आए एक रांगाटूनी पक्षी होती है, गौरव्या को ही ले लीजिए, यहाँ पर गौरव्या है ना, छोटी छोटी
छोटी छोटी
होती है, वो समुद्र से पानी कितना लेंगी,
जितने आएगा एक दो बूंद,
और वो भी समुद्र से पानी नहीं लेंगी, क्यों
खाली है,
समुद्र खारा है। इसलिए महाप्रभु जी ने उनसे एकदम वर्णाश्रम धर्म में धर्म से उठाकर और कहा उसके पार तक ले गए। उसमें से जो चीज, जो भक्ति, जो जिसका अधिकार, जो चीज है वही तक लेगा, किंतु आगे वाला ठीक नहीं है ये कह नहीं सकता। महाप्रभु जी ने ब्रजरस की भक्ति दी ये ठीक नहीं, ये कोई कह सकता है नहीं। मान लिया कि जिसी को लोभ भी है उसके लिए, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये आपने गड़बड़ किया, आपको वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वैदिक भक्ति में ही रहना पड़ेगा। जिसका सौभाग्य होगा उसको ग्रहण कर सकेगा। वर्णाश्रम धर्म में जैसे कि यहां पर जितने भी पुजारी हैं या विश्व में जितने भी पुजारी हैं, अपने घर में गृहस्थ लोग हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें दोष क्या है। जो महाप्रभु जी ने कहा यह बात, जब घर में रह करके सभी को तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, किंतु महाप्रभु जी ने यह बात जो क्यों कहा। उन लोगों का साधु संग नहीं है और साधु संग नहीं रहने से भक्ति क्या जो रहस्य चीज है वो नहीं जानते। वो ये करते हैं कि हमारे बाल बच्चे सुख, हे नारायण, हे कृष्ण, आप जगदीश हैं, जगन्नाथ हैं, हमारे जो कष्ट है उसको दूर कीजिए और हम लोग सुखी रहें संसार में। इसलिए भगवान की पूजा करके भी उसका फल कहां ले आते हैं,
अपना कर्म।
जैसे कोई लड़की है या लड़की के घर वाले हैं, लड़की की शादी में विलंब हो रहा है, लड़की को कहते हैं अरे तू राधा जी की तुम कृपा कटाक्ष पढ़ो, कृष्ण की तुम सेवा करो, पार्वती जी की सेवा करो, वो प्रसन्न होकर के तुम्हारा वर दे देगी। तो भगवान की उपासना कर रही हैं या वो लड़की कर रही है, उसकी मैया या बाप कोई भी हो, तो वो प्रार्थना करते हैं हे प्रभु इसकी जल्दी से शादी हो जाए या अपने घर में जाकर के सुखी रहे। ऐसा होता है कि नहीं, समझ रहे हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं ऐसा ये दुर्भागा लो, मान लें कि इसकी शादी हो गई, गई वो पति जिसको कहते हैं, पति माने होता है पालन करना, तो माने रक्षा करना, वो अपनी रक्षा कर सकेगा, जो अपने ही रक्षा नहीं कर सका तो वो हमारी क्या रक्षा कर सकेगा। इसलिए हाड़ चाम मांस रक्त में जो पति है उसके लिए भगवान को प्रसन्न करके और उनसे ये प्रार्थना कर, हे प्रभो हे भगवान हमारे लिए सुंदर पति हुए। ये क्या हुआ, भक्ति हुई, ये भक्ति नहीं। ऊपर से देखना पड़ता, देखते हैं हम लोग जो कुछ नहीं करते हैं, रात भर जग करके, दिन भर जग करके क्या नहीं कर करके उनको खुश करते हैं, किंतु है क्या, भक्ति नहीं। तो वर्णाश्रम धर्म में रह करके जो साधुओं का संग नहीं है, विशेष करके महाप्रभु के परिकरों का संग नहीं है, इसलिए गृहस्थ वाले ऐसा ही करते हैं। मान लिया कि कोई है व्यक्ति विशेष, उसने शुद्ध भक्ति किया, किंतु जरूरी नहीं है कि सभी ऐसे ही होंगे, इसके बाद में वो मूर्ति कलग्रह हो जाती है। कलग्रह समझते हैं ना,
गले का फांस,
छोड़ भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, गुड़े हो गए, अब उनका कौन सेवा पूजा करे, तब कहे अच्छा भाई एक नौकर रख लो उनकी पूजा करे। इसलिए कामना वासना है, अधिक से अधिक स्वर्ग तक पहुंचाएगी, नहीं अधिक से अधिक मुक्ति तक दे लेगी ऐसे भक्ति से। जब कृष्ण के लिए ही भक्ति हो, कृष्ण की ही भक्ति हो और कृष्ण के लिए ही हो, कृष्ण के सुख के लिए, तो ये भक्ति भक्ति कहलाए। क्या कहा, क्या बतलाया, कृष्ण की ही भक्ति हो,
कृष्ण के लिए ही,
और कृष्ण के लिए ही, कृष्ण के सुख के लिए हो, अपने लिए तनिक इतनी भी नहीं, तब तो वो सुख था। यद्यपि रुक्मिणी सत्यभामा ये मुक्त से भी बहुत ऊपर हैं, है ना, मुक्त से बहुत ऊपर हैं, परिकर हैं भगवान के, किंतु गोपियों से यही पार्थक्य है। वो विवाहित है ना, इसलिए पुत्र पर स्नेह, पति पर स्नेह, घर पर स्नेह उनकी प्रति बिखरी हुई है, बहुत जगह बटी हुई है, गोपियों की कहीं नहीं बटी, एक मुख से भगवान के प्रति बनती है। कृष्ण के सखा मित्र बंधु भाई जो कुछ कहो, पति पति से ऊपर भी जो कुछ कहो, कौन है, बस एक कृष्ण, दूसरा कोई नहीं, कोई भाग लेने वाला भी नहीं है, कोई बेटा बेटी भी नहीं है, कोई पृथक से पति नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को महापुरुष जी ने कहा यह बाज्य, उसमें शरीर आविष्ट, शरीर को ही मैं मानते हैं। जब तक उस भक्ति में ये मानेंगे कि मैं ये शरीर हूं, तब तक शुद्ध भक्ति नहीं कभी होगी नहीं। इसलिए इसके तर बनाए गए, स्तर बनाए गए, निष्ठा रुचि आसक्ति इत्यादि। रामानंद उन्होंने कहा जी और कहिए, तो उन्होंने बतलाया, उन्होंने बतलाया जत करोसी जदस्नासी जज्जहोसी जदासी तप जत तपस्य सकंते यो तत कुरुष मदार्पणम। जो कुछ करते हो अपने जीवन में, अच्छा बुरा लौकिक पारलौकिक सब कुछ, वो भगवान को अर्पण करो। क्यों अर्पण कर दो, समझ रहे हैं जब क्यों अर्पण, आपका कोई चीज है तो आप उसको अर्पण कर सकते हैं, आपका चीज ही नहीं तो क्या अर्पण करेगा, है ना, आपका कोई चीज ही नहीं है और दूसरे का 5 रुपए आपके पास में रखा है, कहा जैसे मैं इसको अर्पण करता हूं आपको, अधिकार है, संसार में तेरा क्या है, है कुछ जो तुम देख करके सेवा करेगा, इसलिए इसमें दोष है। अपने को कर्ता मान करके मैं कर्म करता हूं और जो कुछ है ये मेरा है, उसमें से कुछ भाग भगवान को अर्पण करता हूं, सब किया अपने को किया नहीं किया। और इसमें भी शरीर का संबंध है, महाप्रभु के पहले इन चीजों को कोई भी अच्छी तरह से विचार करके हम लोगों के सामने नहीं रखा, महाप्रभु क्या उपाधि का, ये महाप्रभु जी पहले हैं जो इस विचार को दिख रहा है, एक एक बात में कहां त्रुटि है क्या है। यदि मान ले कि कोई ऐसा करता है जो अपने समस्त कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर देता है, अपने को किया, यदि अपने को ही कर देता तो फिर क्या अर्पण करने के लिए रहता। पिताजी ने विराट संपत्ति बनाई, मैं उनका पुत्र, और पिताजी बैठे हैं, बाजार से मैंने एक धोती लाई और कुछ कपड़े कुछ फल लाए, पिताजी मैं आपको दान कर रहा हूं, ये ठीक है कि नहीं, क्यों
ऐसा तो नहीं कर,
हाँ और आगे आ जाइए। ये ठीक नहीं, बुझते पाचन तो दान करेगा, उन्हीं का तो दिया हुआ शरीर भी है, इसलिए भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ, और तुम ऐसे की इच्छा कहते जब करोशी जो कुछ भी करो, करने वाला कौन है, मैं हूं या तुम हो करने वाली, इसमें यह कहा गया ये तुम पहले ही अपने को अर्पण कर दो, ये कहा गया? ये नहीं कहा गया। इसलिए ये जो काम करेगा इससे मुक्ति तक मिल जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मुक्ति माने कौन? पांच प्रकार की मुक्तियों में से कोई एक, विशेष करके वही जो भगवान के साथ में मिल जाता है यही मुक्ति मिलेगी, जो कि वैष्णव ने इसको बहुत निंदनीय समझा है, भगवान में मिल जाना मुक्ति तो इसे आगे नहीं बढ़ सकता जो कुछ भी आशा करता है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा जिसमें भी देहाभिमान है और ये मुक्ति तक ले जाएगा, हमको मुक्ति की जरूरत ही नहीं है। मुक्ति भगवान 10 बार देने के लिए कहेंगे, हम कहेंगे जरूरत नहीं। तब उन्होंने कहा जैसे और आगे कुछ बढ़िए, तब उन्होंने क्या कहा?
ज्ञान मिश्रा को
पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तो उपहृतम स्नामी। यदि कोई भगवान को भक्ति पूर्वक भक्त्या और प्रयत्न, यहां पर भक्त्या माने क्या? भक्त होकर और भगवान की सेवा के लिए देता, नहीं तो भक्ति नहीं। भज धातु माने सेवा, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम माने पानी भी, कुछ नहीं है तो ये भी यदि दे दिया, अर्पण नहीं किया, भगवान को देकर के सेवा करता है तो इससे 1000 गुना अच्छा है। किंतु तभी कर्म का इसमें स्पर्श है, भक्ति अभी सगुना उपासना, सगुन उपासना भक्ति है, भावमयी अभी नहीं हुआ। पत्र पुष्प फल इत्यादि देकर के तो करेगा, अभी भाव देकर के गोपियों जैसा ब्रजवासियों जैसा अभी नहीं आएगा। अभी संसारिक शरीर इत्यादि अभी है, उसमें आसक्ति है और इस तरह से कर रहा है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा जी और आगे बढ़ो। तब उन्होंने कहा सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरण भजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। चिंता मत करो, सब धर्मों को छोड़ करके हमारा शरणागत हो जाओ। महाप्रभु जी ने इसको भी कहा क्या? यो बात जागे कुहार, मतलब तो इतना ऊंचा चीज, सब छोड़ करके भगवान के वो शरणागत हो जाओ। महाप्रभु जी ने इसको ग्रहण नहीं किया। शरणागति भक्ति भक्ति नहीं है, भक्ति का दरवाजा है, दरवाजे तक आप पहुंच गए। भक्ति की कोई सेवा प्रति इसमें नहीं है, बल्कि अपनी कुछ आशा है क्या? मां सुचह, शोक मत करो, मेरा तेरा तेरा जितना दुख और कष्ट और जो पाप लगा ये सबको छोड़ने में तुमको, ये यदि तुम्हारी भावना ऐसी है जो माता पिता भाई बंधु संसार के प्रति अपना सब कर्तव्य हमने छोड़ दिया है तो ये पाप हमको लगेगा, मत ऐसा सोचो, सबसे तेरा उद्धार कर दूंगा। इसलिए ये शरणागति नहीं, ये भी भक्ति नहीं है, भक्ति का दरवाजा है, किंतु दरवाजे तक अभी आए। महाप्रभु ने कहा इसको भी छोड़ो। अर्जुन कौन है? पंचभौतिक शरीर को कह रहा है। और सर्वधर्मान माने धर्म को छोड़ो माने क्या? शरीर के और मन के जितने धर्म है इसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, आत्मा के धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। आत्मा का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, इसको छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। इसको पाने के लिए भी दरवाजे पर ये गया है, उसको भी प्रवेश कराना है इसमें। अब यहां से आत्मा की वृत्ति आरंभ हो, इसलिए महाप्रभु जी ने कहा जी इसको भी छोड़ो, इसे आगे चढ़ो ऊपर। उन्होंने कहा जी आगे कहा आ, तो उन्होंने क्या बतलाया? ज्ञाने प्रयास मुदपश्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता सन्मनोभिः पायसो अजीतो अपि जीतस्तैः त्रैलोक्यम्। भगवान अजीत हैं, उनको कोई पराजय नहीं कर सकता, वशीभूत नहीं कर सकता, अजीत हैं। तभी ज्ञाने प्रयासम उपास्य, ज्ञान कहते हैं तीन चीजों से बनता है, तीन चीजों के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। इन तीनों चीजों के ज्ञान को प्रयास को छोड़ना है, प्रयास माने चेष्टा। तन पदार्थ का ज्ञान और तत्पदार्थ का ज्ञान, जीव और ईश्वर के संबंध का ज्ञान, तत् और तंग जो है ना दोनों का बीच का जो संबंध है इसका ज्ञान, ये ज्ञान कहलाता है। तत्पदार्थ माने, तत्पदार्थ माने तत् माने वह भगवान, भगवत तत्व का ज्ञान होना चाहिए। क्या वो जड़ीय नहीं है, अप्राकृत है, उनसे बढ़कर के और कोई नहीं है। कौन? भगवत तत्व, उसमें नारायण राम सभी भगवत तत्व आते। वो क्या है? सब कारण कारण है, अखिल ऐश्वर्य के अधिपति हैं, ऐश्वर्य माधुर्य सब में एकदम परिपूर्ण है। जीव उनका अंश है, यह है त्वंग पदार्थ। मायावादियों का दोनों में संबंध यह है, तत् ही पदार्थ है, त्वंग पदार्थ नहीं है। नहीं, जगत और जीव ये दिखता है किंतु है नहीं, ये झूठा है। जैसे स्वप्न में किसी एक आदमी ने हमारा सिर काट दिया और मैं रो रहा, अरे सिर काट दिया तो रोने का प्रश्न कहां से आया, किंतु देख रहा है ये रो रहा है, दुख हो रहा है। ऐसे ये सारा विश्व है ही नहीं है, उन लोगों का है। और वैष्णवों का ये विचार है कि जीव और ब्रह्म में क्या भेद है, ये जो त्वंग है वो तद वस्तु का अंश है, झूठा नहीं, और ये जगत भी झूठा नहीं है। जीवों के लिए ये कारागार है और शिक्षा है वैष्णवों के लिए। यदि ये जगत की सृष्टि नहीं होती तो हम साधन नहीं कर सकते। पुत्र को जैसे हम प्यार करते हैं वैसे ही भगवान को प्यार करना चाहिए। यदि ये सृष्टि नहीं होती तो ये भाव कहां से आता है? इसलिए जो तत्वदर्शी हैं उनके लिए ये शिक्षागार है, झूठा नहीं। इसी तरह से एक सखा को सखा जैसे प्यार करता है वैसे भगवान को सखा मान करके लौकिक सद्बंधों की भांति उनको मित्रता करनी चाहिए। मित्रता भी दो तरह की होती है, एक होती है वो हमारा उपकार करता है हम उसका उपकार करते हैं, इसको कहते हैं सौहृद। और साथ साथ में खेल कूद क्रीड़ा इत्यादि के साथ में दोनों एकदम बराबर होकर के एक जैसे होते हैं, एक माने भाव से, एक तत्वता नहीं, तब इसको कहते हैं मित्रता भाव, सौहृद। इसलिए सुहृद सखा को भी कहते हैं, किंतु इसमें होना चाहिए लौकिक बंधुवत। यदि ये जगत नहीं होता तो लौकिक भावना कहां से मिलेगी हमको, किस चीज को पकड़कर हम ऊपर उठ सकते हैं? इसलिए साधकों के लिए वैष्णवों के लिए ये शिक्षा का आगार है। आरएसमन झूठा नहीं है, सूर्य झूठे नहीं है, भगवान के अवतार झूठे नहीं है, तुम भी झूठा नहीं है, तुमको जो उपदेश दे रहे हैं वो भी झूठे नहीं है, कोई भी झूठा नहीं है। जो झूठा पाते हैं वही झूठा है। अब कहते हैं इन तीनों के ज्ञान के लिए तुम अधिक प्रयास मत करो, ये कृष्ण स्वयं भगवान है, मैं उनका अंश जीव हूं। कहां तक जरूरत है? साधन की एक स्थिति तक कुछ जानने की जरूरत है, वहां तक जान लिया। इसके बाद में ब्रजवासियों जैसे उस कृष्ण को भूल जाना पड़ेगा जो वो भगवान है, और कृष्ण भी भूलेंगे जैसे ये हमारा परम मित्र सखा बंधु हमारा प्रियतमा ये है। इसलिए यदि हम लोग साधन करते करते उच्च अवस्था में भी ये भाव रखेंगे ये कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वो सर्व कारण कारण है, अघटन घटियन पटियसी शक्ति संपन्न है, जो नहीं होगा उसको भी असंभव को भी संभव कर देने वाले हैं, ऐसे भगवान हैं। तो उस भगवान में प्रेम नहीं होगा, उसमें होगा क्या, पूज्य बुद्धि बस आएगी, बस इतना है, हृदय नहीं मिल सकता। इसलिए महाप्रभु जी राय रामानंद ने बतलाया ज्ञाने प्रयासम उपास्य, तत्व ज्ञान के लिए एक स्तर है बस उतना ही तक, इसके बाद में उसके लिए प्रयत्न मत करो, हरि कथा के माध्यम से तुम्हारा ये तीनों का ज्ञान भी हो जाएगा साथ साथ भक्ति भी बन जाएगी, सेवा भी। और राय रामानंद जी का उपाख्यान लो, उसमें क्या बाकी रह गया, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, जगत में कुछ भी बाकी नहीं रहा। सनातन गोस्वामी से महाप्रभु जी की जो कथा हुई, अलग से क्या बाकी रह गई, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी से ये जो भागवत की कथा कही, इसमें कुछ बाकी रही, कुछ नहीं। तस्मिन महन मुखरितो मधुभाष चरित्र पीयूष अशेष सरिता परिता श्रमंती ताजे पिवंते निपगाढ़ करना तान्न स्पृशति असं
त्रिडभेशोक मोहा।
जो कोई भगवान के रसिक तत्वज्ञ वैष्णव हैं, केवल तत्व ही नहीं हरि कथा ऐसा करते हैं, उसमें तत्व तो अपने आ जाता है, भगवत तत्व जीव तत्व, इसके लिए पृथक करने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, वैराग्य एक चीज है, यदि भक्ति नहीं है और वैराग्य करे कोई व्यक्ति तो ये मरण का ये कारण होगा, भक्ति उसकी चौपट हो जाएगी, जो हो रही थी वो भी नहीं होगी। और भक्ति उदित होने पर अपने आप जो वैराग्य आता है वो वैराग्य यथार्थ वैराग्य, उसकी आवश्यकता है, किंतु भक्ति अभी हुई नहीं और जोर से वैराग्य करने लगे हृदय शुष्क हो जाएगा। उसी तरह से ज्ञान के संबंध में भी समझो, हरि कथा के माध्यम से जहां चैतन्य चैतन्य देखो उसमें कौन सा ज्ञान बाकी रह गया, सब लीला कथाओं के माध्यम से कितनी सुंदर सुंदर सब कथाओं की। इसलिए पृथक रूप से ज्ञान प्रयास अर्थात तो कृष्ण भगवान है, मैं आत्म तत्व हूं, दिन भर रात भर यही चिंता करेगा तो भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम ही नहीं होगा, बस पूज्य बुद्धि आकर के थोड़ी सी होकर के सेवा भावना भी नहीं। यदि भगवान ब्रह्म है तो उनको भूख लगती है, तो उनको भोजन देने की प्रसाद देने की क्या जरूरत है, यदि उनको माला की ही जरूरत नहीं है तो तू माला देकर के क्या करेगा। हम तो इसलिए माला देते हैं जब भगवान के गले में माला देंगे तो उनको प्रसन्नता होगी, और यदि देखते हैं कि भगवान को माला देने से वो चिढ़ जाते हैं तो वो देने से प्रसन्न होंगे। सर्दी का समय मौसम, पानी में गुलाब का फूल भिजा करके ले आकर के उनके गले में डाल दो, बूढ़े गुरु जी हैं, प्रसन्नता होगी कि नहीं। इसलिए ये सब चीजें नहीं, ज्ञाने प्रयास मुत्पाश्य नमन जीवंत सन्मुखरितान
भवदीय
सब समय भगवान की लीला कथाओं में मत है। कैसे कृष्ण का जन्म हुआ, भरत महाराज जी ने कैसे जन्म लेकर के, और वो कौन राजा रघुगण राजा, उनको किस प्रकार से तत्वोपदेश करते हुए हरि कथा के माध्यम से। चित्रकेतु महाराज जी की कथा सुना है आप लोगों ने, थोड़ा थोड़ा सुना है आप, याद नहीं है, उनको पुत्र नहीं होता था तो उनको पुत्र होने का अंगिरा ऋषि ने दे दिया, जे जाओ तुम्हारा पुत्र होगा किंतु सुखदायक और दुखदायक दोनों होगा, 5 वर्ष का हुआ तो लड़का मर गया तो ये दुखदायी हो गया, बहुत रोने लगे। फिर नारद जी और अंगिरा जी आकर के समझाया, उस लड़के को जीवित कर दिया, लड़का उठ गया, कहा इनको छोड़कर के क्यों गया, तो ये हमारे कौन है, ये 10 जन्मों तक तो हमारे बेटे और कौन कौन हुए और एक जन्म में इनका पुत्र हो गया, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, मैं जहां हूं बड़ा अच्छा हूं, जब पुत्र चाहिए तो नहीं हमारा पुत्र मिल गया, तो ये जहां इच्छा हो चले भगवान का भजन करके। इन सब लीला कथाओं में ही तत्व अपने आप है, तथा कुछ से कुछ जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान विशेष करके ब्रज का भाव पाने के लिए ऐश्वर्य तक कभी छोड़ देना पड़ेगा, ये कृष्ण भगवान है ये सब भूल जाना पड़ेगा। किंतु हमारे भूलने से नहीं होगा, हम नहीं भूल सकते। जोग माया यदि कृपा करके यदि ऐसा करें तब तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुत ऊंची बात है ये। तो यदि कोई ये ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके भगवान की लीला कथाओं का, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की लीला कथाओं का, राय रामानंद संवाद, रथ जाता का प्रसंग, फिर रूप गोस्वामी को जो उन्होंने उपदेश दिया था शक्ति संचार करके, फिर सनातन गोस्वामी को जो दिया, ये सब जो प्रसंग है, इन प्रसंगों सुनने से अपने आप ये चीजें हो जाए। फिर ज्ञाने प्रयास उपाषण नमंत एव जीवंत सन्मुख रिता भवदीय वार्ता। जो साधु संत लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में भक्ति रस संचरित है और उनके मुख से अनर्गल बिना किसी प्रयास के, बिना प्रश्न के भी, उनको देख करके ही जैसे गाय बछड़े को देख करके चुचुआ जाती है दूध देने के लिए, ऐसे उनको देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है, अपने आप कथा अवतरित हो जाती है। उस कथा को अपने आप जो निकले उसका यदि कोई सेवन करे, नमस्कार करे, जहां पर हरि कथा हो रही है उस स्थान को प्रणाम करे, उस कथा वाचक को करे और उस कथा श्रोताओं को प्रणाम करे, जैसे सुखदेव गोस्वामी पहले श्रोताओं को प्रणाम करते हैं, हम लोगों के गुरु वर्ग लोग श्रोताओं को इसलिए प्रणाम करते हैं कि इनको देख करके हरि कथा की स्मृति आती है, स्फूर्ति होती है। जिनको किसी प्रकार का लोभ नहीं है संसार किसी भी चीज का, मुक्ति तक के लिए भी, परीक्षित महाराज जी ने हरि कथा 7 दिन सुनने पर उनको कुछ दक्षिणा दिया था कि नहीं? दक्षिणा दिया था। वो दक्षिणा क्या थी? अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पण कर दिया। आप जो कहेंगे वो मैं आप करूंगा, जो कह दिया है उसको मैं पालन करूंगा, बस उनको यही मिल गया, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो जो ऐसे हरि कथा का आदर करते हैं, हरि कथा वक्ता को भी, हरि कथा श्रोता को, उस स्थान को, अब यहाँ पर हरि कथा हो रही है, हम लोग इस स्थान को भी प्रणाम करें, जो उद्योगता है उनको भी, जो कह रहे हैं उनको, जो सुन रहे हैं उनको, ऐसा करता हुआ अपना जीवन यदि बिताएगा हरि कथा श्रवण में ही, तो अजित जो भगवान हैं, जो कभी जीत नहीं होते, उनको कोई जय नहीं, वो भी वशीभूत हो जाते। वशीभूत होने के लिए कहा, किंतु कैसे वशीभूत होंगे ये नहीं बतलाया है? उन्होंने कहा जी इहो है, मैंने यहां से आरंभ हुआ, अभी पूरा नहीं। कैसे भक्तों के वो वशीभूत होंगे? भक्ति के तारतम्य से वो वशीभूत होंगे। इसके बाद में एक श्लोक कहा, उसका तात्पर्य ये है, नहीं इसके पहले एक श्लोक है, यदि भूख है और प्यास है तो भोजन और पानी का मूल्य है। नानोपचार कृत पूजनम आर्त बंधो
भक्त हृदय सुख विद्रुतम सर।
यदि प्यास है किसी के अंदर में और भूख है तो उसको कुछ भी दे दो, सत्तु दे दो, केवल ये साग और अन्न दे दो, वो भी मोटा चावल, या रूखी सूखी बाजरे और ज्वार की मिली हुई रोटी भी दे दो, सूखी कैसा खाया, अमृत से भी अधिक पड़कर के खाया। और भूख नहीं है तो भाई क्या सब्जी बनी है, क्या क्या बना है बतलाओ, तो उसको देखेगा, इधर उधर करेगा, इधर उधर कर करके खाएगा, तो भूख तो है नहीं, पेट में बदहजमी है, बहुत खाया हुआ है, भूख है नहीं, क्या करेगा। ऐसे ही जिसके अंदर में प्रेम की भूख नहीं है, प्रेम की भूख किसकी होगी? यहां पर उदाहरण में भी कुछ मालूम होता है कि कुछ गड़बड़ है, किंतु गड़बड़ नहीं, ठीक है। भूख मैंने कहते हैं जिसको भूख लगती है वही जब खाता है तो उसको तो रसा स्वाद आता है, तो वहां पर कहते हैं जिसको भूख है, जो साधन भजन कर रहा है, ये सुख इसको नहीं होता, भगवान को सुख होता है, ऐसा क्यों कह दिया? सुखम क्या विद्युतम स्यात्,
भक्त हृदय सुख विद्युतम स्यात्,
भगवान को ये आनंद होता है उसकी सेवा से, तो भक्त कहां गया? इस पर विचार करके देखा जाता है, तो ये कह रहे हैं भगवान को कभी भी भूख नहीं लगती, वो आत्म काम है, आत्माराम है, उनको कोई चीज की जरूरत है किसी चीज की जरूरत नहीं, अपने आप में वो पूर्ण है। तब भक्त लोगों की सेवा की जब वासना हृदय में आती है तो भगवान को उसको ग्रहण करने की लालसा जम जाती है। यशोदा मैया को ये भाव हुआ कि बेटा हमारा दूध पिए, तो कृष्ण को भूख लग गई, मैया मैया का गोदी में आकर के दूध पीने लग गए। इसी तरह से भगवान को जरूरत नहीं, हमारे अंदर में यदि प्रेम है तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान को भी भूख लग जाती है, और उस चीज को पाकर के प्रभु का चित्त प्रसन्न हो जाता है, और उनको प्रसन्न देकर के जीवों का हृदय भी प्रसन्न हो जाता है। अभी देखो प्रेम नहीं आया, अभी तो उपाय बतला रहे हैं, ये प्रेम कब आएगा जिससे कि भगवान सुखी होंगे? तब वो कहते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम कुतोपि यदि लभ्यते तत्र लौलमपमे कलम जन्म कोटि सुकृतिर् न लभ्यते। भक्ति होती है कैसे? कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भक्ति होती है, किंतु ये प्रेम जो पाया जाता है कृष्ण के प्रति प्रेम, ये कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से जो भक्ति उत्पन्न होती है उस भक्ति से नहीं होगा। ये कैसे होगा? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कृष्ण की भक्ति रस से प्लावित, जिनकी बुद्धि है मति है, ऐसे भक्तों का संग करके उसके मुख से हरि कथा यदि सुना और सुनने से कुछ भगवान की सेवा की लोभ सेवा की वासना यदि जग जाई तो इससे खुशी है, अन्यथा वैसा प्रेम नहीं उदित होगा। लाख कोशिश कोई करे, कोटि कोटि बतलाए ना, कोटि जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तब उतर ना पाए कृष्ण, हम लोगों को क्या भरोसा है? साधन हरिनाम ही तो करेंगे ना, श्रवण कीर्तन करेंगे कुछ, किंतु इससे प्रेमा भक्ति हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। तो तभी इसलिए कहते हैं श्रवण कीर्तन करो, इस पर भरोसा मत रखो। भरोसा रखा किस पर? शुद्ध ऐसे रसिक भक्त यदि हूं, कैसे? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जैसे रसगुल्ले के कड़कण में पाक देने पर रस एकदम भर जाता है, ऐसा निचोड़ो, जितना भी निचोड़ो किंतु उसमें रस कुछ न कुछ रह जाएगा। वैसे ही जिसकी मति ऐसी भक्ति में शराब और हो गई, भक्ति में नहीं, भक्ति रस में, रसमयी भक्ति में, और ऐसे भक्तों का संग हो जाए तो वो क्या करेंगे? अपने भाव को दूसरों के हृदय में संचरित कर देंगे, बस लोभ उत्पन्न हो जाएगा, उस लोभ के द्वारा जो भक्ति होगी इसके द्वारा वशीभूत होगा। इसे नहीं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, और आगे बढ़िए, महाप्रभु जी तृप्त नहीं हुए, रास्ता दिखला रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, इसे आगे बढ़े। तब उन्होंने दास्य भक्ति का एक स्वरूप, शांत को लाया नहीं, शांत को अलग रख ढकेल दिया। शांत माने क्या? कृष्ण सर्वेश्वर है, उनमें केवल निष्ठा एक हो जाए, हमारे क्या लगते हैं ये संबंध नहीं। ऐसे सनक नंदन सनातन ये जो जितने लोग हैं इनकी भक्ति को ब्रज रस में नहीं ला, इसलिए इसको अलग रख करके भक्त से भक्तों की होने पसंद। जितने प्रकार के भक्त हैं उन सब में नारायण के भक्त श्रेष्ठ हैं, ये बतलाया गया है श्रीमद् भागवत ने भी, गीता में भी बतलाया है। कोटिश्वपि महामुने क्या है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम
नारायण
पराम
कोटिश्वपि महामुने,
कोटिश्वपि महामुने। हो गया है समय, कितना हुआ,
1 घंटा 3-4 मिनट।
अब समाप्त करते हैं, बाकी रह जाते हैं। अब इतना तक में पहुंचे तो बहुत काफी, इसके बाद में तो बहुत हुआ। कहते हैं कि भक्त लोग जो हैं अपना सर्वस्व समर्पण करके वो जानते हैं कि मैं चिद वस्तु हूं, भगवान का अंश हूं, मैं जड़ीय शरीर नहीं हूं, इसको पार कर गए हैं। ऐसे वो लोग भक्त अग्रह है मुक्ति
तभी
सर्वबंधनाश तबे सहित्य पारे श्री कृष्ण दास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, इसको समझ करके भगवान के प्रति दास्य भक्ति कर रहे। इन भक्तों में हनुमान जी को प्रहलाद महाराज को क्यों नहीं लिया, उनका एक विशेष भगवान के प्रति अब ये भाव नहीं है कि मैं उनका दास हूं। सनक सनंदन का भी नहीं लिया, इसीलिए एक भगवान के प्रति। जब कृष्ण में एक निष्ठा होगी यहां से आरंभ होगा, इसलिए इस यहां पर भक्ति का भी वर्णन किया है कृष्ण के दासों से। नीचे का नहीं, वो देने के लिए नहीं आया, इसको तो रामचंद्र जी और रामानुज मध्व सभी को नहीं, इसे तृप्ति नहीं होनी। महाप्रभु जिस चीज को देने आए हैं उस चीज के प्रति हमारा लोभ, ये यदि हुआ तो हरी कथा सुनना सार्थक। गौ प्रमाणम
के जबी भाई भव सिंधु पार के जबी भाई भव सिंधु पार धन्य कलि युगे न चैतन्य
अवतार
चैतन्य अवतार के जाति के जाति रे भाई भव सिंधु पार के जाति रे भाई भव सिंधु पार।
व्हाट यू वांट टू हियर
दिस कीर्तन
ठाकुर was after some time of Chaitanya Mahaprabhu he has written also a
Chaitanya Mangal
Chaitanya Bhagavat, but when Vaishnava of Vrindavan saw that Vrindavan Das Thakur has written Chaitanya Bhagavat and it was more Siddhant and more beautiful and more having Shuddha Chaitanya Mahaprabhu past times. So all get certified, they certified all that this is Chaitanya Bhagavat and Vrindavan Thakur is the व्यास ऑफ चैतन्य महाप्रभु लीला। सो दे ट्रांसफर्ड द नेम ऑफ लोचनदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत इनटू चैतन्य मंगल।
आगे तो दूटा चैतन्य मंगल छिलो, परे तो ना वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत करा ना चैतन्य मंगल दिया,
ताई तो
भागवत कर दूटा चैतन्य मंगल नाम छिलो।
Here, Chaitanya Mangal, something गौर नागरी बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गौर नागरी बाद चैतन्य महाप्रभु में भी नागर एंड एनीवन कैन डू भजन दैट वी आर नागरी एंड चैतन्य महाप्रभु इज नागर लाइक कृष्ण नाइक नाइक बट चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर गोस्वामी सनातन गोस्वामी दे आर नॉट अलाउड गौर नागरी दास दे आर रिजेक्टेड सो एज रिटन द पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु बट इन सम सेंस नॉट सो मच अथेंटिक like Krishnadas Kaviraj Goswami, Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavata. But yet, he is a Vaishnava Kavi. All Vaishnava has accepted him as Vaishnava. So this Kirtan is of Lochan Das. Kejabi, Kejabi Bhai, Bhavasin Bhupad. He is standing on the shore of sea of Bhavasagar and calling all that who wants to go across this Bhavasagar. No tax, no purchasing tickets. If no bhakti, no heart. No shraddha, no heart. Only come. And you should wish that we will go across Bhavasagar and come here. The very most strong ship is here. And that ship is of Harinam. Whether you have shraddha or not, Nishtha, whether you are in anartha, aparad, no bhakti at all, yet you should come and you can be a jatri of that sea.
Passenger
of that sea. So any man having no shraddha, having so much aparad or okay. Anything. Only you have to be repentance for anarth and aparad and wish that you will go to across this ocean of birth and death. Only you have sadha towards name. Come on. Dhanya Kali Yuge Chaitanya Avatar. This ship has been arranged by Chaitanya Mahaprabhu. Before it was not like this. So this Kali is Dhanya Kali Yuga. In this Kali Yuga, in the end, Kalki will not come. No cause to come Kalki, because all will cross this ocean of birth and death only by taking the ashraya of only Harinam. So this is Dhanya Kali. By this name, Chaitanya Mahaprabhu brought a very big, serious varsha of prem. Varsha means?
Rain of prem. Heavy shower of rain.
And by this, a very big flood came of prem. And in this flood, everyone only accepting Mayavadi, Tarki, Chhatra, Padua, only they were checked or everyone went, they emerged in that thought. Chaitanya Mahaprabhu thought that why they should be escaped, they should not be accepted. They fled away to Puri and some fled away to Kashi. Chaitanya Mahaprabhu followed. He came first to Jagannath Puri and Mayabadi Guru Sarvabhaum Bhattacharya, he took in his plate, cloth, and he also sank in that very big cloth, and he went through sea and crossed this world by this train. And then he saw that one some Mayavadi are in Kashi, and he followed at once and went to Kashi and began to chant Hare Nam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, and began to dance by singing this, and all were attracted. At once they drowned in this very big
flood.
And they also through Ganges, they crossed the sea and came to sea, and they were also
flowed
away in this flood. In this way, not only them, the animals, the lions, tigers, elephants, deer and all other, they also
floated away
in that prem banya. All began to cry Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hari Bol, Hari Bol,
Gaur Premanande, Hari Hari Bol.
So that this lesson thus is calling all standing on the shore of this Bhavasindhu and calling all that you should not fear. There is no tax, no fare. Come on only, having this Shraddha to name, and come on. If there is no Shraddha, no harm, you should come. We will create Shraddha. Chaitanya, this seat will create. This is the importance and speciality of that sheep. Sheep always lives in the shore where is birth and death. It does not go on the other side. But being here, those who want to take ashray of this name sheep, they go cross that ocean, and sheep is always here. This is the speciality of this
name.
So he is calling. There is no time, always. No time means in night, whole night, in whole day, in whole month, in whole year, in whole yug, every time. Sheep is ready there, always ready. And no tax, fare, nothing. I am seeing that jada andha atu. Jad means does not know anything, no tattva. Andha, agyani.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्णा
অনেক রকমের
দেখ আপনার পার্শ্বত তো বটে
অনেক রকম হোয়াট দেব হোয়াট লাইক স্টোন হোয়ার অন্ধ অন্ধ মানে ব্লাইন্ড আতু সো suffering
atur
mane hocche art ladan mane ei art je rokom
hocche
bajan
bajra
any kinds of person they may come sankirtan karwal dubahu pasari সংকীর্তন কারওয়াল মানে
কেরওয়াল বৈঠ বাইজে
বইছে দুবাহু পাসারি দোনো হাতো কো পাসার কর ও কমাউন 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 সংকীর্তন ইজ দ্যাট সব জীব হইল পার Those who have taken the ashram of Harinam, that cross this ocean, very big ocean, endless ocean. Only by not sitting on the ship, but only the air coming from that ship, that is prem, premer bat ashe. No need of prem. প্রেমের বাতাস মানে কি আভাস দ্বারা হরিনামের আভাসের দ্বারা ভবসাগর পার প্রেম তো বহু উপরের কথা উই ক্যান ক্রস দিস বাই দি নামাভাস লাইক আজামিল অ্যান্ড অল আদার্স এনি ইফ এনিমন উইল টেক হরিনাম উইথ প্রেম then he'll go to Braja. Padiya lahir lochan apnare dosh. Lochan Das Thakur is pivoting and telling all have gone across the sea but I am so unfortunate that I am here. I could not go. When that air from name will come to me and will cross this sea. Today is the birthday of Lochan Thakur Das. He should give his mercy to us. I Lochan Das Thakur is Abhirbhav. এখন এই সবগুলি খবর রেখেছে আমাদের খবর
রাখে
লিখা হয় না বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লিখা হয়
বৃন্দাসব লিখা হয়
এর পূর্বে কেউ বিচার করে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করে কার আমরা অনুসরণ করে সহজিয়াদের এই সবগুলি বিচার করবার ক্ষমতা নেই বলো কি হবে নেবিশ মহারাজের সংবাদ দশম স্কন্ধেতে দাস সখ্য বাৎসল্যে মধুর রস কথা বলা হবে তার মধ্যে দেখাইলেন এই শ্রেণী যারা আশ্রয় কিরকম ভাবে কৃষ্ণের সেবা করে প্রাণ দিয়ে সমস্ত রসের বৈচিত্রিক চমৎকার প্রশ্ন করতে কেছে কবিতা যদি সরিয়ে নিয়ে যায় তাহলে রস বলে কি চমৎকারিতা মানে দীরস মধ্যে যেরকম ওরকম হয়েছে দাস্যরসেতে চমৎকারিতা সক্ষরসের একটা আর চমৎকার বাসল্য রসের আরো বেশি চমৎকার কৃষ্ণ সেখানেতে অধীন হয়ে যায় এইসব বলি চমৎকার তার থেকে আরো চমৎকারটা আছে সেখানে কৃষ্ণ আরো বসি সেই গোপী মানে মধ্যেও শ্রীমতী রাধিকার চমৎকারিতা বেশি চমৎকারটা মানে সেবার বাসনা এমন ভাবে উৎকর্ষতা লাভ করে যে কৃষ্ণকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে তার মহা উল্লাস সাধক করে সাধকের দিক দিয়ে সেবা আর উল্লাস টাকা কৃষ্ণ কৃষ্ণের উল্লাস হলে তাহারই প্রসাদ স্বরূপ ওই ভক্ত রূপের মধ্যেও মহা উল্লাস এইসব বর্ণন এবং বর্ণন করলেন বললেন যে সে বেদ ইত্যাদি সব শাস্ত্র রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে এইসব বিচার নাই নিগম কল্পতরুর গলিতাং ফলম সুখমুখাদ অমৃত দ্রবসঞ্জুতম পিওর ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরহো রসিকা হে রসিকগণ হে ভাব রসিকগণ আবার দু রকমের যারা রস চাচ্ছে আর যারা রসের মধ্যে ডুবে আছে দুটা হবে যারা রসের মধ্যে ডুবে নাই কিন্তু রসের আকাঙ্ক্ষা করেছে তারাও আর যারা রসের মধ্যে ডুবেছে রাগাত্মিক ভক্ত অথবা এই জগতে তাহাদের ভাব ইত্যাদি উৎপন্ন হয়ে গেছে যেরকম ভাউ 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 না হলে আপনি ভাউক হবেন রসিকতে সেই রকম হলেও রসের জন্য আকাঙ্ক্ষা যাহাদের তাদেরকে ডাকছেন আপনারা সমান করুন কখন পর্যন্ত আলয়ম আলয় নম দশা পর্যন্ত দশম দশা কি হচ্ছে
মূর্ছা
মৃত্যু মৃত্যু তো হয় না ওই পর্যন্ত আবার ফের উঠে আবার ফেরতে এই দয় পর্যন্ত এই নিরন্তর এটা কি নিগম কল্পতরুর গলিতাং ফলম এটা নিগমানে বেদ উপনিষদ শ্রুতি স্মৃতি সব কিন্তু এরা আছে তরু তরু মানে বৃক্ষ বৃক্ষে কাছে গেলে রস পাওয়া যাবে না ওই বৃক্ষ যে রসও হয় কেটে দিলে তো রস সেটি খাওয়া যাবে না পাতার মধ্যেও রস থাকে কিন্তু সে রসের এখানে না ফল চাই যদি কেউ রস চাই দিচ্ছে তাহলে ওই ফলটা পাকবে তার মধ্যে থেকে এ রস পাওয়া যায় ডালের মধ্যে পাতার মধ্যে জলের মধ্যে ভয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে না রস এই বেদী শাস্ত্র ইত্যাদির মধ্যে এই রস পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে কোথায় নিগম কল্পতরুর গলিতাং ফলম ওর ফলটা চাই ফলটা কোথায় লাগে শেষে দিকে লাগে ডালের অন্যদিক এই বেদরূপী শাখা পৃথিবীতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে কোন কোন শাখা এ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর বৈকুণ্ঠে পৌঁছেছে আর কোন কোন শাখা এর বৈকুণ্ঠকে পার করে গিয়ে একাধারে প্রজে পৌঁছেছে আর সেখানে ওই শাখাটা আর পাঁচের উপর ধার করেছে সর্বোচ্চ যে শাখা ওটি গোলক বৃন্দাবনীতে যে শ্রীমতী রাধিকাকে আশ্রয় করে দিয়ে ওইখানে ফল পাবে এইটা হচ্ছে পরিপক্ক ফল ভাগবত ওই হচ্ছে গোলক বৃন্দাবনেতে শ্রীমতী রাধিকাকে আশ্রয় করে যে সর্বোচ্চ ফল ওইটি হচ্ছে ওই প্রেম ফল হে রসিক, হে ভাবগণ, আপনারা আসুন। কা ভূভাগ কালপত্তর ওর গলিতান ফল, এই ফলটা ওখানে ওখান থেকে পড়ছে, হাওয়া বাতাস লাগলে পড়ে যায়, পেকে গেলে নিজে থেকে, কিন্তু ব্রহ্মা তাকে নিয়ে দিল, ব্রহ্মা থেকে পড়ে গেল, কারণ তরল তো পড়ে গেল, নারদ ভিতর নার থেকে নিয়ে নিলেন, এইটি ফুটল না অথচ রস, আঠি বলকলা এই সবগুলি হেয়া রস বর্জিত, সবটা রস রসনা কেন বলল, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্কন্ধ ইত্যাদিতে যেসব রাজন্য বর্গের যে চরিত্র বলা আছে এগুলো কি রস নয়, এগুলি তো রস মানে এই জন্য এক জায়গাতে বলে দিলেন
বাক্য বিভূতি
নচপারমার্থম পরমার্থ নয় বাক বিভূতি, আবার বললেন যে সে বাক বিভূতির ন,
বাক্য বিভূতির নচ পরমার্থম
পরমার্থ, বাক বিভূতির ন এখানে অর্থ যেটা করা হবে বাক বিভূতি নয় জ্ঞান আর বৈরাগ্য, এই দুটাকে উৎপন্ন করাইবার জন্য যোগ্যতা দেওয়ার জন্য একটি, আর ভাব যে রসিক যারা রসজ্ঞ তাদেরকে ওই প্রেম দেওয়ার জন্য, এই জন্য সমস্ত ভাগবতকে নিয়ে নিলেন যে সে এইটা রসস্বল, কিন্তু এর মধ্যে যে রাজন্যবর্গের চরিত্র ইত্যাদি দেহতি ইত্যাদি সংবাদ এগুলি কি হচ্ছে বাদ বিভূতি মনে করব না, এটি ওইটাকে প্রেম ফল স্বাদানের জন্য যোগ্যতা বলে দিয়ে বর্ণন করলেন কি রসটা কি ভাগবতের মধ্যে উত্তম শ্লোক যে কৃষ্ণ তাহার লীলা চরিত্র, লীলা তথা ব্রাতা দ্বাদশ স্কন্ধেতে বলেছেন, যেখানে বলছে কৈবল্যিক প্রিয়জনম তাহার ঠিক দুই শ্লোক কি এক শ্লোক আগে এটা বলেছে, ভাগবত হচ্ছে রসস্বরূপ, যদি কৈবল্যিক প্রিয়জনম কেবল মানে মুক্তি ভগবানের মধ্যে মিশে যাবে সেটা তো রস না, সেখানে রসিক নাই রস নাই রস যাহার প্রতি লাগু হয় সে উপরে তিনটেই নেই, তিনটা মিলে যে এক নির্বিশেষ হয়ে গেছে
দুটি বিনাশ,
এই জন্য লীলা কথা ভ্রাতা সমূহ, লীলা কথা সমূহ এই হচ্ছে রস ভাগবত, সবচেয়ে বেশি কি সুখদেব গোস্বামী আর বলতে পারেন নাই, তারপরে তারও ভাব বিকার এসে গেছে, গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের যে সমস্ত লীলা কথা এই হচ্ছে যথার্থ রস সর্বোত্তম রস, এইগুলিকে বলছেন যে আপনারা আসুন পান করুন, যারা পান করে নাই তাহাদেরকে ডাকছে যোগ্যাধিকারীগণকে, আর যারা রসিক একটু তাদের বলছে এইসব কথা, কিন্তু সকলেই পান করতে পারবে না, পান করবার যোগ্যতা থাকা যায়, কৃষ্ণ দেখলেন যে সে এইসবগুলি পানের যোগ্য লোক কম, এই জন্য সুখদেব গোস্বামীর দ্বারা একাদশ স্কন্ধেতে দেখলেন যে সে এর কিছু ধাপ সাধারণের ধাপ আমাকে দিতে হবে যাতে এটা পেয়ে যাবে, শুনলেই সাধারণ লোকের এইগুলি হবে না, লীলা কথার মধ্যে এইসবগুলি আছে তথাপি সারূপে সাধন কিরকম জীব করবে যাতে এই প্রেমটাকে আস্বাদন করবে ভাবুক হতে পারবে, এই জন্য একাদশ স্কন্ধেতে ন যোগেন্দ্র নেমিষ মহারাজের সংবাদেতে এটি আরম্ভ কবি হবি অন্তরিক্ষ পলায়ন
প্রবুদ্ধ অবিরক্ষ দেউল চমসকর ভজন,
এরা কত ভরত মহারাজ ছোট ভাই একই পিতার বহু সন্তান, তার মধ্যে এরা জাতি পাতি বর্ণাশ্রম ধর্ম নির্বিশ থেকে কোথায় উপরে, এরা হচ্ছে পরমহংস, আর ভরত মহারাজ কি ছিলেন
পরমহংসেরও চূড়ান্ত
তিনি ছিলেন ভক্ত ভাগবত, ভক্ত ছিল। এরা ছিল একটু জ্ঞানী গোচর, ইনি ছিলেন ভগবত ভক্ত। ইনার ভাবের সঞ্চার হয়েছিল কার ভক্ত মহারাজ আর লোক শিক্ষার জন্য। তিনি দেখলেন ওই ভাব থেকে আমি চুপ হয়ে গেলাম তিনজন। কিন্তু জীব গোস্বামী বলছেন যে সে বঞ্চিত হও না, এই ভক্তি এমন একটা জিনিস কোন জিনিসকে অপেক্ষা রাখে না। ওই তিনি বিষয়ের মধ্যে একটু লেগে গেলেন, কিন্তু ভক্তি অপ্রত্যাহিত থাকল, অপ্রতিহত দুজন্মে হিরণ্য থাকলে ওই ভক্তি ছিল, আর যখন জন্মভাব হলেন তখন ওই ভক্তি তার থাকলো। তখন নির্বিঘ্ন, এখানে বিঘ্ন ছিল ওখানে বিঘ্ন দূর করে দিয়ে একেবারে চলে। চিত্রকেতু মহারাজ তিনি পার্বতী দেবীর অভিসম্পাতেতে তার ভক্তি একটা মনে হচ্ছে যে সে একটা
স্থগিত হয়ে গেল,
স্থগিত হয়ে গেল, স্থগিত হয় নেই, ভিতরে অন্ত প্রবাহে মন চলছে, অন্ত সলীলা। যেরকম হতে গয়াতে
ফল্গু নদী,
ফল্গু নদীতে ভিতরে ভিতরে ধারা চলছে, উপরে মনে যে শুকনো, ওইরকম তাহাদের ইনার ভক্তিও দেখা যায় যে অসুর হলেও চিত্রকেতু মহারাজ বেদাসু, তথাপি ওই ভক্তিটা অব্যাহিক যে ইন্দ্র ইত্যাদি মধ্যে নেই। এই জন্য ভক্তি একটা অদ্ভুত জিনিস। ইনারি ভাই ছিলেন নব যোগেন্দ্র, এরা নেমি মহারাজকে যে উপদেশ দিয়েছিল সেই উপদেশ সুখদেব গোস্বামী পরিচিত মহারাজকে দিয়েছে। এখন থেকে ভবিষ্যতে যে জীবগুলি আসবে, কৃষ্ণের সময় যে ছিল তাহাদের তো কৃষ্ণকে দেখে প্রীতি হয়েছে, প্রেম হয়েছে, তখন সাধন ভজনে বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। অধিকাংশ লোক যারা ছিলেন প্রকট লীলাতে, তারা পূর্ব জন্মের সংস্কারের দ্বারা অনেক উচ্চ হয়ে ওই লীলাতে প্রবেশ করেছেন। জনকপুরের ওই মেয়েরা, ঋষিরা, অন্য অন্য সবগুলি এরকম হয়তো অন্য রসেরও তাদের সংস্কার আছে, কিন্তু যে যে কলিকুলিতে আসবে তাদের তো সংস্কার বিহীন আমাদের মতো পূর্বনয় সংস্কার। বৈষ্ণব সঙ্গ তো ভারী কঠিন, বুঝবে না যে ভক্তি কাকে বলে। এই জন্য সুখদেব গোস্বামী অনুগ্রহ করে পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন, নারদের সে একদিন আসলেন দ্বারকাতে, কেন আসলেন? যখনই তাহার ভগবত স্মরণ একটু বিঘ্ন উপস্থিত হয়ে যেত তাতে, তখন তিনি দ্বারকাতে আসতেন। কেন? কৃষ্ণের ভূজা দ্বারা রচ্ছি, ভূজা মানে শক্তির দ্বারা, এখানে কলিকাল প্রবেশ করবেন। কৃষ্ণ যদি ডেকে নিয়ে আসেন তা একটা পৃথক কথা, যেরকম পরে ডেকে নিয়ে এসেছি, কিন্তু এমনি মায়ার শক্তি কালের শক্তি না এমন কি কলিযুগের যে ওখানে আসে। এই জন্য এইখানে থেকে কেন ওই দক্ষ প্রজাপতির ছেলেগুলিকে পড়িয়া এমন করে দিলেন যে তারা বৈরাগ্য নিয়ে চলে গেল, খবর করে সংসার করেন, আবার ফের দিল ইনাকে সাবধান করলো, তথাপি আবার ফের সেই জ্ঞান দিল, ওরা আবার চলে। এই জন্য রেগে তাকে অভিসম্পাত করে দিলেন, গো দহন কাল পর্যন্ত এক জায়গা থাকবেন, এর থেকে আর বেশি থাকতে পারবেন না। নারদ ঋষি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলেন যে সে এইটা আমি চাচ্ছিলাম, তুমি অভিসম্পাত আমাকে দিলে, এখন সমস্ত পৃথিবীটা আমি ঘুরিয়ে বেড়িয়ে ভগবানের কথা আমি সকলকে বলবো, এখন তো তোমার চাকর হয়ে কেবলমাত্র তোমার ছেলেকে বলছিলাম, এখন বিশ্বতে এই হরি কথা বৈষ্ণবদের কাছে যা কিছু আছে সব ভক্তির অনুকূল করেলে, আমরা আমি ছটফট ছটফট করি, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজকে দেখুন কি অন্যান্য ঋষিকে দেখুন, নারদ ঋষিকে দেখুন, এদেরকে দেখুন, সব কিছুই ভক্তির অনুকূল। এই জন্য এরা মহাভাগ মধ্যম অধিকারী সব তা করতে পারে না, আর কনিষ্ঠ অধিকারী তো অধিকাংশই তাহার অনর্থ। তখন নারদ ঋষি এখানে আসতেন কিসের জন্য? কৃষ্ণ উপাসনা লালসা,
কৃষ্ণ দর্শন,
কৃষ্ণের উপাসনার জন্য এখানে আসতেন। এখানে কিছুদিন থেকে তার লালসা পূর্ণ হয়ে যেত, কৃষ্ণকে দর্শন করতেন, তার লীলা কথা ইত্যাদি দেখতেন শুনতেন, আর তারপরে ফের আবার যে জগতে এই প্রচার করতেন। একদিন আকাশ থেকে আসছেন, বসুদেব গৃহেতে যজ্ঞ হচ্ছে, বড় বড় ঋষি মহর্ষি সব জুটে আছে, ও বিরাট ভাবে যজ্ঞ হচ্ছে। ওই সময়তে তারা সকলেই দেখলো যে আকাশ থেকে একটা জ্যোতি সূর্যের মতন সূর্যের একটা ছেলে বোধে বেরিয়ে আসছে। কেউ স্থির করতে পারেন যে কেন কি এটা আসছে। যত নিকটে আসতে লাগলো তখন দেখলি যে একটা ওর মধ্যে একটা রূপ আছে। ধীরে 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 নিচে যখন আসলো আরো তখন দেখলো যে স্যার ইয়ে তো একটা মানুষের মতো না। যখন নিচে এসে গেলেন দেখলেন যে খাড়াম করেন না রূপ উপরে থেকে অপর হাত দিয়ে আসবার সঙ্গে তিনি বললেন যে সে যজ্ঞ বন্ধ করে দাও। যজ্ঞের ফলই এসে গেল আর যজ্ঞের পিতা। যজ্ঞের ফল কি? ভগত ভক্তগণের দর্শন। আর দর্শনের ফল কি? তার মুখে থেকে কিছু কথা এই হচ্ছে ওর ফল। যে যজ্ঞের ফল এটা হরি ভক্তগণের দর্শন নাই সে কি বৃথা যজ্ঞ। সে তপস্যা বৃথা, সে মন্ত্র জপ তপ যা কিছু সব বৃথা, যদি ভগত ভক্তগণের কৃপা না হয় তার সঙ্গ যদি কেউ না করে। অভিমানী দাম্ভিক লোক বৈষ্ণবগণের সঙ্গ করে না, উপেক্ষা করে। এখন তাই যজ্ঞ বন্ধ হয়ে গেল। যজ্ঞ বন্ধ যত ওখানে লোক সব ছিল উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আরে ছেড়ে দো
বড় মশা
তখন সব তাকে প্রণাম করলো, উনি আসলেন বসলেন, তাকে বসিয়ে দিয়ে তাকে অর্ঘ পাদ্য ইত্যাদি দিয়ে তাকে বসাইয়ে তারপরে জিজ্ঞাসা করল প্রভু আমি ভগবান এই কৃষ্ণকে ভগবান বলে তাকে আমি পুত্র রূপে চেয়েছিলাম, কিন্তু সংসার তারবার জন্য মুক্তির জন্য কোনো আমি কিছু চেষ্টা করিনি। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে ওই সকলই উপায় বলে দেন যাতে আমি ভবসাগর থেকে পার করে যাই মুক্তি। এখন মুক্তি বড় না ওই পুত্র ভাব হরি কথা আরম্ভ করবার জন্য কিছু একটা চাই যে আমি কিছুই জানি না। নাগ ঋষি ভিতরে ভিতরেতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আর তিনি হাসলেন, দেখো তো নিজে আমার যে ভাব নাই ওই ভাব পেয়েছে, ওই কৃষ্ণ তার পুত্র হয়ে এসেছেন আর বলছেন যে আমি ভবসাগরের জন্য কোনো চেষ্টা করি নাই, পার হওয়ার জন্য মুক্তির জন্য চেষ্টা করি নাই, দেখো তো এইরকম। তিনি মনে মনে তাকে প্রশংসা করে বললেন আপনি ভগবত ভক্তের মানে কোথায় কৃষ্ণের বাবা আপনার বশীভূত, আপনি ছল বল করে দিয়ে আমার কাছে থেকে জগতের শিক্ষার জন্য কিছু কথা শুনতে চান, আর এইটি এই যে আছে যজ্ঞ করাচ্ছে এদেরকে মঙ্গল হোক এই জন্য আপনি জন্য আপনার জন্য নয়, আপনার যে চরণের ধুলির একটি কোনা পাবে সেও তো ভৌসাগর পার হয়ে চলে যাবে কোথায়, অতএব আপনার জন্য জিজ্ঞাসা কর। আচ্ছা তো ঠিক আছে, এটাকে প্রকট করলেন না উপর থেকে আর তিনি বলতে আর। দেখো প্রাচীন কালেতে জনকপুরী রাজা নেমি মহারাজ তো তিনি ওই রকম হয়তো বসেছিলেন, সেখানেতে বাই চান্স ন যোগেন্দ্র কবি হবি আন্তরিক পলায়ন কর ভাজন ইত্যাদি সব আসলো। এরা কিরকম আসলো? পরমহংস, কেউ ডাকলেও যাবে না, না ডাকলেও যাবে, জগৎ কল্যাণের জন্য তারা ঘুরে, এই জন্য তারা বাই চান্স ইনার নেমি কেন না নেমি কেন নাম হল
নিমিশের
পূর্বজন্মেতে
বশিষ্ঠ
ঋষি গুরু ছিলেন, এরা ছিল ইনি ছিলেন ওই সূর্যবংশে সূর্য বলছে ইক্ষ্বাকুর রাজা, ইক্ষ্বাকুর পুত্র, ইনি বললেন যে আমি যজ্ঞ করাবো। বশিষ্ঠ কাছে গেলেন, বললেন যে আমি যজ্ঞ করাতে চাই। যত মানে কত বছরের জন্য, কত যুগের জন্য? তিনি বললেন যে আমি তো এখন খালি নাই,
সময় নাই,
আমি দেবতা ইন্দ্র আমাকে বরণ করেছে, আমি কত 1000 বছর না কত বছরের জন্য আমি যাচ্ছি ওখানে,
তারপরে
ওদের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে আমি আপনার যজ্ঞটা করি। এই বলে চলে গেল। ইনি থাকতে পারলেন না, ইনি গেলেন গৌতম কাছে।
অনেক বছর, অনেক দেরি,
অনেক দেরি, আমি অতদিন থাকতে পারবো না, আমার যজ্ঞটা করবে। তখন তার যজ্ঞ আরম্ভ করে দিল। 1000 বছরের পরে যখন ফিরে আসলেন, দেখলেন যে সে পিতামার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন, যজ্ঞতা আরম্ভ করে দিয়েছে, আমার কোন পাত্তা নেই, অবজ্ঞা করেছে। তখন তিনি অভিসম্পাত দিলেন, যা তোর দেহ রহিত হয়ে
যায়।
তখন ও রাজা গৌতম ঋষি শক্তি পেয়ে ওই না কে ই করল যে আপনিও দেহ রহিত হয়ে যান। তখন উনিও সেবী করি পরবর্তীকালেতে বেশি তখন উনি তো বশিষ্ঠ ঋষি অগস্ত্যের সঙ্গে একটা কলসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, উনি তো করেন নাই। তখন গৌতম ঋষির কৃপাতে গৌতম ঋষি বললেন যে সে তাহলে আমিও তো দেখতে থাকতে চাই, তাহলে কিরকম থাকবো, তো আমি তা আপনাকে শরীর দিয়ে দিই, যে না আমি শরীর দিব। তখন বললেন যে আমি প্রত্যেক মানুষের এই যে নিমেষ এর উপরে থাকতে চাই, আর অত দ্বারা সবকিছু দেখে আমি ভোগ করেনি। এই দৃষ্টি শক্তির জন্য ভোগ হয় না, রূপে রসে সবকিছু হয়, এই জন্য নিমের উপরে তিনি থাকতেন। এই জন্য পরবর্তীকালে তার নাম হল নিম মহারাজ। এমনিও সাধারণ লোক নন, বশিষ্ঠকে অভিসম্পাদ দিতে পারে। যা হোক, তিনি ওই নেমি মহারাজ জনকপুরেতে এই যে জনক রাজা উনারই বংশেতে, তাহলে এটা কখন কর কথা? ওই জনক রাজা থেকে উনি পূর্বে তার কথা
অনেক আগে
ওই নারদেশ তাহাদেরকে বলছে
কতদিন পরে পরে।
ওই নেমিরা নজবন্ধরা তাহারই বাসভবনেতে আসে, রাজা প্রসন্ন হয়ে তাহাদেরকে সকলকে অভিবাদন করে দিয়ে আসন পাদ্য অর্ঘ ইত্যাদি দিয়ে আদর করে এবং তার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করে। এক একটি প্রশ্নের এক একটি জন্য ঋষি 9টি প্রশ্নের 9টি উত্তর দিয়েছে। তার মধ্যে তিনি বলেছেন 9টি প্রশ্নের মধ্যে মায়া কি, মায়াকে কিরকম সহজে পার করতে পারা যায়, ভাগবত ধর্ম কি, ভক্তি কি, কলিযুগেতে যুগে যুগেতে কি কি অবতার আছে, আর তাদেরকে কি পদ্ধতিতে
পূজা
পূজা ভজন ইত্যাদি করা যায়, কলিযুগেতে কোন অতি অবতার, দ্বাপর যুগে, ত্রেতা যুগে এবং সত্য যুগে কি কি অবতার, ভাগবত ধর্ম কাকে বলা হয়, এইসব এক একটি প্রশ্ন করেন। আর ওই কবি হবি অন্তরিক্ষ ক্রমে ক্রমে তাকে উত্তর দেন। ওইটি শ্রীমদ ভাগবতের 11 স্কন্ধে নজোগেন্দ্র সংবাদ তাকে বলা হয়। আমরা মনে তো এটা পরে ধীরে ধীরে সংক্ষেপে একদিন আরো এর বিষয়ে বলে দিয়ে তার মধ্যে তিনি একটা শ্লোক শুধু বুঝুন, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ভক্তি বলেছেন এবং ব্রতস্ব প্রিয় নাম কৃত্যা জাতানুরাগো একটা এই জগতের যে জীব এদের স্বরূপ কেন মায়াতে এসল আর কিরকম ভজন করে দিয়ে গুরুকে পদাশ্রয় করে ভগবানকে ভাবের সঙ্গে ভজন করে দিয়ে কিরকম ভবসাগরকে পার করে আর একটা ভক্তির স্বরূপ বলতে গেলেন বললেন হরিনাম গুরু বৈষ্ণবের নিকটে তো হরিনাম প্রাপ্ত হয়ে এমন একটি ভাবদশা আসবে এবং ব্রতা স্বপ্রিয় নাম কৃত্যা নিজের প্রিয়কে যে যে ভাবেতে তাহার লোক হয়েছে অর্থাৎ জন জন লোকের যে যে ভগবত অবতারের দিকে আসক্তি আছে রুচি আছে ঝুঁকাও আছে ওই নিজের নিজের প্রিয় রূপে যেরকম নাম জগেন্দ্র ইত্যাদি নারায়ণ নাম করে প্রহ্লাদ নারায়ণ নৃসিংহ নাম করবে হনুমান রাম নাম করবে ব্রজবাসীরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলবে সখারা বলবে কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম গোপাল আর যশোদা মা কি বলবেন উনিও গোপাল বলতে পারে গোপীরা কমলা নেন গোপীকান্ত আর গোপীরা বলবে ফের বেশি করে রাধাকান্ত ইত্যাদি নাম যাহা যাহা প্রিয় নাম ভাবের সঙ্গে করতে 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 অনর্থ দূর হয়ে গেলে সম্বন্ধ জ্ঞান যুক্ত হয়ে হরিনাম করলে সহজে কলিকালেতে ভবসাগর পার করে কৃষ্ণের প্রেম এই কয়েকটি শ্লোক নিয়ে পড়ে এটা একটা ভূমিকা থাকে
শক্তি যদি রহিত হয় তাহলে সম্বন্ধ আসবে আমরা বিষয় বিষয় বাসনা চিত্ত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব জড় বিষয়ে যদি আসক্তি থাকে তাহলে কি করে আমাদের কৃষ্ণ চরণে সম্বন্ধ যুক্ত হবে হরি গুরু গুরু বৈষ্ণবের নিকট থেকে আমরা এই সম্বন্ধটা যদি পাই এবং সেটা গুরু বৈষ্ণবের আদেশটা যদি নিশ্চয় প্রতিপালন করতে পারি তাহলে তো নিশ্চয়ই হবে গুরুদেব যা বললেন বৈষ্ণব সাধুগণ যা বললেন তা আমরা গুরুত্ব নিয়ে না গুরুত্ব না নিলে সে বিষয়ে ইম্পর্টেন্স না দিলে কার্যরূপে পরিণত না হলে তাহলে সাধন হয় না সাধনে চিন্তিবে যা সিদ্ধিতে পাইবে তা সাধন যদি আমরা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে নিশ্চয় রূপে উৎসাহ নিঃসর্জা তত্ত্বকম প্রবর্তনা সঙ্গত্যাগাত সদনই স্বয়ভূতি সিদ্ধতি আমি যত কিছু যা কিছু করছি কিন্তু তার মধ্যে সাময়িক যোগযুক্তভাবে করছি না ওই আদেশ প্রতিপালনভাবে করার মতো করছি কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যোগযুক্ত সহকারে যে বিষয় সম্বন্ধে যোগযুক্ত সহকারে সারাদিন দিবারাত্র চিন্তা করছি বিষয় সম্বন্ধে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ছেলে মেয়ে ইত্যাদি নিয়ে বিষয় সম্বন্ধে সব যোগযুক্ত থাকছি ভগবানের সঙ্গে সেরকম বিষয়েতে রতি হবে আছে আমার সেই মতো রতি হোক চরণে তোমার ভগবত পাদ পদ্মতে আমাদের যদি রতি আর মতি উদয় হয় তাহলে এই ভবসমুদ্র থেকে অনায়াসে পার হওয়া যায় কিন্তু সেখানেতে আমাদের অনর্থ দূরীভূত হবে কখন যদি হরিকথায় রুচি হয় সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গে রুচি হয় সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গে যদি আমরা থাকতে চেষ্টা পাই এবং সেই সঙ্গে থেকে যদি তদ্বৃদ্ধি প্রণিপাত পরিবেশন সেবা যদি গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের উপদ্রব কিন্তু তেই জানান জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী এইরকম চিত্তবৃত্তি নিলে তখন সাধুগণ আমাদের কৃপাপূর্বক পরিবেশনের মাধ্যমে আমাদের সদুপদেশ দিবেন কে আমি কেন মরে যারে তাপত্রয় নাই জানি কইছে হৃদয়, তখন তার সৃষ্টকতা ও পরিবেশনার মাধ্যমে তার উত্তর তাঁরাই দিবেন, এবং সদুপদেশ মাধ্যমে আমি কেনই ভবসমুদ্রে পতিত হচ্ছি, কেন দেহা আত্মার মধ্যে অনর্থের মধ্যে থাকছে, ঠিক কেন বলি আমার বলে মনে করছি, প্রকৃত বস্তু আমি নাই, যাকে আমি আমার মনে করছি সে বস্তুগুলো প্রকৃত আমার নয়, সেগুলো আমার ছেড়ে যেতে হবে। এগুলো সাধু বিষ্ণুগণ এই দেখুন ভাগবত কথার মাধ্যমে বিভিন্ন হচ্ছে প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন ভাবের মধ্যে আপনাদের কাছে পরিবেশন করছে, সেই পরিবেশনটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে সেই শিক্ষাটা আমাদের হৃদয়ে সবসময় রাখতে হবে, ফুলের মালাটা তার মধ্যে গিট না দিলে যত ফুলগুলো গাঁথা যায় না কেন সমস্ত খুলে যাবে সব। অতএব ভগবত কথা সাধু বাক্য শাস্ত্র বাক্য সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য তিন করিয়া ঐক্য আর না করিয়া মনে আসা, সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য তিন বস্তুকে এক করে নিয়ে আমাদের সবসময়ের জন্য তাতেই আমাদের অবস্থান করতে হবে, এইটা হচ্ছে আমাদের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়। মহারাজ যা বললেন সাধু বাক্য শাস্ত্র বাক্য গুরুবাক্য তিন করে ঐক্য, এই তিন ঐক্যের তার সহকারে প্রতিদিন সেই তার মতো অবস্থান করতে হবে, সে শিক্ষাকে প্রতিদিন প্রতিদিন যদি সেই শিক্ষা যদি আমি অবলম্বন করি তাহলে আমাদের অনর্থ দূরীভূত হবে, অর্থাৎ আস্তে 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 আমাদের হৃদয়ে যে মায়া অবস্থান করছে মায়ার আস্তে ধীরে 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 আমাদের থেকে অবসরিত হবে, তা নাহলে সাধু বাক্য ছাড়া অন্য কোনো বাক্য বোঝা যাবে না, সাধুবাণী একমাত্র জগতের বন্ধু, সাধুবাণী যদি আমাদেরকে ভবসমুদ্র পার করবার জন্য তাদের জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে চক্ষু উন্নীত যেন তসমিস্ত্রী করবেন, তিনি জ্ঞানচক্ষু তারাই দিবেন, জ্ঞানচক্ষু অন্য লোককে দিতে পারেন না, আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানচক্ষু দিয়েই তিনি আমাদের জ্ঞান অন্যন অর্থাৎ আমাদের এই জ্ঞানচক্ষুর উপরে তিনি অন্যন দিয়ে দিবেন, যে অন্যানের দ্বারা জগৎকে দর্শন করব, নিজেকে দর্শন করব, সমস্তকে দর্শন করব, সেই অন্যনটাই তারাই দিবেন, সেটা একমাত্র তাদের কৃপা, সাধুগুরুর কৃপাই আমরা উদ্ধার পাব, আমি আমরা যত রকম সাধন বর্জন চেষ্টা আরো বা নিজের চেষ্টা যত থাকবো সে যত ত্যাগ করতে পারবো, যত সাধুগুরু বাক্যকে অবলম্বন করতে পারবো শিক্ষাকে অবলম্বন করতে পারবো ততই আমাদের এ সমস্ত সংসার থেকে পারবার, ততই আমরা এ করতে পারবো, আমাদের যত রকম চেষ্টা সে চেষ্টা একমাত্র সাধুগুরু পাদ পদ্মেতে তার আজ্ঞার মাধ্যমে সেখানে নিযুক্ত করতে হবে, তবেই আমাদের মঙ্গলের কারণ, তাহলে যত আমার আসি না কেন তাহলে এই কথা মনে রাখবেন, সাধুগুরু বাক্য কথা শ্রবণ করে যাচ্ছেন, সুয়াতে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে শোয়ার সময় চিন্তা করবেন যে মহারাজা কি বলেছেন সাধুগোষ্ঠীগণ কি বলেছেন, সেগুলো চিন্তাকে ধারণা করবেন, হ্যাঁ তাহলে যেরকম মধুমক্ষী বিভিন্ন ফুলের থেকে ফুল মধু অনুসরণ করে চাকরির মধ্যে রাখে এবং তারা গ্রহণ করে, আমরা সেরকম